संयुक्त राष्ट्र रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार बुलेटिन। मैं हूं महबूब खान। 31 जनवरी 2020 के इस अंक में शामिल है कोरोना वायरस पर अंतर्राष्ट्रीय चिंता वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य इमरजेंसी घोषित। अमेरिका की नई मध्यपुर योजना को मानवाधिकार विशेषज्ञ ने बताया असंतुलित व एकतरफा। संयुक्त राष्ट्र स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर शुरू हुआ यूएन 75 संवाद। यहूदियों के नरसंहार होलोकॉस्ट की याद में यूएन मुख्यालय में हुआ एक विशेष कार्यक्रम। जयपुर साहित्य महोत्सव में छाया जलवायु मुद्दा भी, और शहरों में रहने वाली गरीब आबादी के सामने क्या है चुनौतियां। हम आपको याद दिलाते चलें कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य वाली समाचार सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आना ना भूलें। पता है news.un.org/hi। साथ ही अपने मोबाइल फोन पर यूएन न्यूज रीडर ऐप भी डाउनलोड करेंगे तो बाई ओर विभिन्न भाषाओं की सूची में हिंदी भी नजर आएगी। आप हमारे न्यूज़लेटर को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके जरिए प्रमुख समाचार आपको आसानी से मिलते रहेंगे। आइए अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडेनोम घेब्रेयेसस ने चीन सहित अन्य देशों में नोवेल कोरोना वायरस के मामले लगातार सामने आने के मद्देनज़र उसे अंतर्राष्ट्रीय चिंता वाली सार्वजनिक आपात स्थिति घोषित कर दिया है। यूएन एजेंसी प्रमुख ने कहा कि चीन में हालात की वजह से नहीं बल्कि अन्य देशों में परिस्थितियों को देखते हुए ये घोषणा की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
कोरोना वायरस से संक्रमण के अब तक 9,500 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें अधिकतर संख्या चीन में ही है। 213 लोगों की मौत हो चुकी है और 12,000 से ज्यादा मामले संदेह के दायरे में रखे गए हैं। अधिकतर मामलों में वायरस संक्रमण से पीड़ित लोगों ने चीन की यात्रा की थी या फिर वे चीन की यात्रा से लौटने वाले व्यक्तियों के संपर्क में थे। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण के मामले चीन के अलावा अन्य देशों में भी पता चले हैं। यूएन स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस ने गुरुवार को स्वास्थ्य विशेषज्ञों की आपात समिति की एक बैठक के बाद कहा,
आई एम डिक्लेयरिंग अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न ओवर द ग्लोबल आउटब्रेक ऑफ नोवेल कोरोना वायरस।
दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले सामने आने के बाद मैं इसे अंतर्राष्ट्रीय चिंता वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य इमरजेंसी घोषित कर रहा हूँ। इस घोषणा का मुख्य कारण चीन में हालात नहीं बल्कि अन्य देशों में परिस्थितियां हैं। महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस के शब्द। चीन से बाहर 18 देशों में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले सामने आए हैं। भारत सहित कई देश चीन से अपने नागरिकों को वापस बुला रहे हैं और विमान कंपनियां चीन जाने वाली अपनी उड़ानों को सीमित कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय चिंता वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य इमरजेंसी की घोषणा के तहत यूएन स्वास्थ्य एजेंसी कुछ अस्थायी सिफारिशें जारी करती है। ये सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती लेकिन ऐसे उपायों के रूप में होती है जिनसे यात्रा, व्यापार, मरीज को अलग रखे जाने, स्क्रीनिंग व उपचार पर असर पड़ता है। साथ ही यूएन एजेंसी इस संबंध में वैश्विक मानक स्थापित कर सकती है।
संयुक्त राष्ट्र के एक स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ ने कहा है कि अमेरिका द्वारा दशकों से चले आ रहे इसराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के समाधान के लिए इस सप्ताह पेश की गई योजना असंतुलित व एकतरफा है और ये योजना फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर इसराइली कब्जे को और ज्यादा मजबूती देगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार 28 जनवरी को व्हाइट हाउस में मध्य पूर्व के लिए एक शांति योजना जारी की थी, जिसे नाम दिया गया शांति, समृद्धि व एक उज्ज्वल भविष्य के लिए विजन, यानी भविष्य दृष्टि। इस योजना में फिलिस्तीनी इलाकों, पश्चिमी तट व पूर्वी यरूशलम में बसाई गई इसराइली बस्तियों को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। साथ ही इसराइल को पश्चिमी तट का लगभग 30% हिस्सा भी अपने कब्जे में लेने की इजाज़त होगी। इस अमेरिकी योजना के बारे में संयुक्त राष्ट्र ने अपना जाना पहचाना रुख व्यक्त किया, जिसमें इसराइल और फिलिस्तीन के रूप में दो राष्ट्रों की स्थापना की बात कही गई है। यूएन के इस दीर्घकालिक संकल्प में कहा गया है कि दोनों राष्ट्र एक साथ शांति व सुरक्षा के साथ रहें, जिनकी सीमाएं 1968 से पहले के आधार पर निर्धारित हों। लेकिन इसराइल द्वारा कब्जा किए हुए फिलिस्तीनी इलाकों में मानवाधिकार स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि माइकल लिंक का कहना है कि अमेरिकी योजना में डेढ़ देश का समाधान पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि ये योजना एक न्यायसंगत व टिकाऊ शांति का कोई समाधान नहीं है, बल्कि ये 21वीं सदी में मध्य पूर्व में एक बंतुस्तान यानी भेदभावपूर्ण वाली जगह बनाने का प्रावधान करती है। माइकल लिंक ने अमेरिकी योजना की निंदा करते हुए कहा कि ये फिलिस्तीनी इलाकों में इसराइली यहूदी बस्तियों को वैध बनाने का प्रस्ताव है। उन्होंने तमाम देशों से आग्रह किया कि वो फिलिस्तीनी क्षेत्रों को छीनने की किसी भी कोशिश की भर्त्सना करें। फिलिस्तीनी क्षेत्रों को इस तरह छीनना अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार प्रतिबंधित है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के 75वें वर्ष में वैश्विक चुनौतियों के समाधान की तलाश करने के लिए लोगों की आवाज़ सुने जाने के प्रयासों के तहत बुधवार को न्यूयॉर्क स्थित यूएन मुख्यालय में युवा प्रतिनिधियों ने महासचिव अंतोनियो गुटेरेश के साथ एक संवाद में हिस्सा लिया। इस सभा में युवा प्रतिनिधियों ने भविष्य के लिए अपनी महत्वाकांक्षी रूपरेखा के बारे में बात की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व सभी की बात को सुना जाना अहम बताया गया। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
इस कार्यक्रम के साथ ही यूएन स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर वैश्विक संवाद की औपचारिक शुरुआत हो गई है, जिसके समानांतर अन्य गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। इस संवाद का उद्देश्य ये जानना है कि सभी के लिए बेहतर दुनिया के निर्माण में संगठन किस तरह और ज्यादा काम कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र की बैठकों में आमतौर पर मंच से भाषण दिए जाते हैं, लेकिन इस परिपाटी में बदलाव लाते हुए यूएन प्रमुख युवाओं के बीच में जाकर बैठे। उन्होंने युवा प्रतिनिधियों से मुखातिब होते हुए कहा,
So I want to have this 75th anniversary as an occasion for us to listen and to learn.
यूएन की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने को मैं लोगों की बात सुनने और सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहता हूं। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि क्या किया जाना चाहिए, मैं आपसे सवाल कर आपके जवाबों को सुनूंगा। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के शब्द। जॉर्डन की एक युवा प्रतिनिधि जहां रिफाई ने बताया कि उनके लिए एक बेहतर दुनिया का अर्थ उन सभी 7 करोड़ 10 लाख लोगों की घर वापसी है जिन्हें युद्ध और यातना के कारण अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित अन्य टेक्नोलॉजी की सुरक्षा व संचालन मामलों पर रिसर्च में जुटी बेल्जियम की एलेनोर पावल्स ने बताया कि राजनीतिक व टेक्नोलॉजी सेक्टर में खाई को पाटने में यूएन की अहम भूमिका है, ताकि शक्तिशाली नई टेक्नोलॉजी के लाभ सभी को हासिल हो सके और जोखिमों को कम किया जा सके। यूएन 75 नाम से शुरू हुई इस पहल को वैश्विक स्तर पर वास्तविकता को जानने परखने का एक अवसर बताया गया है, जिसमें एक बेहतर भविष्य के निर्माण से संबंधित बातचीत को बढ़ावा दिया जाएगा और समाधानों को सुना जाएगा।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने कहा है कि बढ़ती नफरत और यहूदी विरोधी हमलों में तेजी के इस दौर में दुनिया को इतिहास से सबक लेना होगा, ताकि यहूदी जनसंहार होलोकॉस्ट जैसी भयावह घटना फिर ना दोहराई जा सके। यूएन प्रमुख ने पोलैंड में आउशविट्स बर्केनाउ यातना शिविर को मुक्त कराए जाने के 75 साल पूरे होने और 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों और अन्य लोगों के जनसंहार की याद में न्यूयॉर्क में आयोजित एक स्मरण समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। यूएन प्रमुख ने सोमवार को होलोकॉस्ट स्मरण दिवस पर कहा कि नफरत के इस दौर में हमारी एकजुटता पहले से कहीं अधिक ज़रूरी है। दुनिया भर में हम यहूदी विरोधी हमलों में बढ़ोतरी देख रहे हैं। अमेरिका में यहूदी विरोध और नफरत से प्रेरित अपराधों का रुझान बढ़ रहा है। 75 वर्ष पहले सोवियत संघ के सैनिकों ने जब आउशविट्स कैंप को मुक्त कराया था, तो वहां भयावह हालात देखकर एक गहरी खामोशी छा गई थी। लेकिन यूएन प्रमुख ने कहा कि उन यातना शिविरों के विवरण को हमेशा याद रखना होगा, उनसे मुंह ना मोड़ना बेहद अहम है, ताकि होलोकॉस्ट से सबक सीखा जा सके और उसे फिर कभी ना दोहराया जाए। उन्होंने सचेत किया कि जब मानवता के विरुद्ध इन अपराधों को अंजाम दिया जा रहा था, तो लाखों लोग उनसे बेपरवाह थे, इसलिए सदैव सतर्कता बरती जाना जरूरी है। महासचिव ने एक अपील जारी करके कहा कि टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल पर सतर्कता रखनी होगी और नफरत को सामान्य बनाने वाले संकेतों के प्रति चौकन्ना रहना होगा। यूएन महासचिव के मुताबिक जब किसी समस्या के लिए लोगों के किसी समूह को जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो मानवाधिकारों का उल्लंघन करना और उनके प्रति भेदभाव को सामान्य बनाना आसान हो जाता है। भारत में राजस्थान की अनूठी सांस्कृतिक विरासत की पृष्ठभूमि में जयपुर साहित्य महोत्सव का 13वां संस्करण 23 से 27 जनवरी के बीच आयोजित हुआ। इस साहित्य महोत्सव में अनेक साहित्यकारों, पत्रकारों, नोबेल पुरस्कार विजेताओं सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने शिरकत की। साहित्य महोत्सव के अंतिम दिन सोमवार को विचारों, बहस और संवाद के इस लोकतांत्रिक मंच पर संयुक्त राष्ट्र के भारत कार्यालय ने जलवायु संकट पर एक जीवंत सत्र आयोजित किया। अंशु शर्मा की एक विशेष रिपोर्ट।
भारत के गुलाबी शहर जयपुर का मशहूर दिग्गी महल सांस्कृतिक रंगों से सराबोर था। चारों तरफ वैचारिक गहमा गहमी छाई थी। मौका था दुनिया के सबसे बड़े साहित्य महोत्सव जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का। 5 दिन तक चलने वाले इस साहित्य महोत्सव में हर साल 2000 से ज्यादा वक्ता और लगभग 4 लाख किताब प्रेमी शामिल होकर सामयिक विषयों पर चर्चा और विचार विमर्श करते हैं। वर्तमान संदर्भ में सबसे अहम मुद्दे जलवायु परिवर्तन के समाधान तलाश करने के मकसद से संयुक्त राष्ट्र ने इस महोत्सव में जलवायु आपातकाल पर एक चर्चा आयोजित की। चर्चा ने तब एक भावुक मोड़ ले लिया जब मशहूर फिल्म अभिनेत्री और संयुक्त राष्ट्र की टिकाऊ विकास लक्ष्यों की पैरोकार दिया मिर्जा की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने लोगों से प्रकृति से सीखने और प्रकृति को बचाने की अपील की।
वक्त है आपके पास? है। Do you have time? Amazing. We have a decade. औरतों की बात सुनिए, माओं की बात सुनिए, माँ सब जानती है।
पहाड़ों के लोगों पर जलवायु परिवर्तन के असर का उल्लेख करते हुए लद्दाख से सौर ऊर्जा अन्वेषक सोनम वांगचुक ने शहरी लोगों से साधारण जीवन जीने की गुजारिश की ताकि पहाड़ों पर लोग कम से कम जी तो सकें।
ये तो पहाड़ों में हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, हिम पर्वत है, वो सब पिघले जा रहे हैं और जब वो पिघलते हैं तो फिर लोग तो इन पहाड़ों में उन्हीं पे निर्भर। ग्रीष्म ऋतु में ही इतना पानी आ जाता है जब ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं कि बाढ़ आ जाती है। 2006 में पहली बार ऐसी बड़ी बाढ़ आई थी। जब लोगों से हमने पूछा उस गांव में तो कहते हैं हमें याद भी नहीं है इससे पहले कब आई। 2010 में उससे भी ज़्यादा बड़ी आई। 2015 में फिर आई, 17 में फिर आई। एक बार बाढ़ आई तो दूसरी बार अकाल। ऐसे समस्याएँ पहाड़ों में होने लगी।
वहीं यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट के लिए कमजोर तबके पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की कहानियां इकट्ठी करने वाली पत्रकार नमिता ने नदी और समुद्री तटों पर रहने वाले लोगों की कहानियां साझा की।
इन द रूरल एरियाज देयर आर कम्युनिटीज इन तमिलनाडु।
तमिलनाडु में ऐसे समुदाय हैं जहां समुद्री शैवाल पर निर्भर किसानों को अपनी आजीविका बदलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि समुद्री शैवाल अब लुप्त हो रहे हैं। इसी तरह दिल्ली जैसी जगह पर मछुआरे मृत मछलियां पकड़ रहे हैं। उन्होंने मुझे जो बताया वो हृदय विदारक था।
पत्रकार नमिता वाइकर के शब्द। चर्चा के दौरान जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर भी प्रश्न उठा।
यूएन कोई विश्व पुलिस नहीं है, यूएन एक विश्व सरकार भी नहीं है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र के लिए तय अधिकार और क्षमता सीमित है। असल में हम कई मोर्चों पर अपनी सीमाओं से परे जाकर काम कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के बारे में बताने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यह है कि हम दुनिया को राजी करने के काम में जुटे हैं, लोगों को बुनियादी रूप से सही बात के लिए राजी करना।
भारत में संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर रेनाटा डिजालियन के शब्द। इस चर्चा का संचालन करने वाले समीर सरन ने कहा कि जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे को कला और संस्कृति के साथ जोड़कर जागरूकता और व्यवहारिक परिवर्तन लाने में मदद मिलेगी।
इन जगहों से कहानियां निकलती हैं, हमारी कहानियां हम हैं, और अगर हमारी कहानियां ग्रीन है, हमारी कहानियां सस्टेनेबल है, तो शायद हमारा जो फ्यूचर है वो भी भरा होगा खुशहाल होगा।
ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के प्रमुख समीर सरन के शब्द। संदेश स्पष्ट था, पर्यावरण के हिसाब से एक टिकाऊ विश्व का निर्माण करना केवल सरकारों का ही नहीं बल्कि सभी लोगों की जिम्मेदारी है, फिर चाहे वो आम आदमी हो या कला संस्कृति से जुड़े लोग। एक ऐसी दुनिया जहां प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना हो, जहां वैश्विक तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहे, उसके निर्माण के लिए अब यथार्थ में उम्मीद भरी कहानियां विकसित करनी होंगी।
वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 31% यानी लगभग 40 करोड़ लोग शहरों में रहते हैं। یہ آبادی 2030 تک بڑھ کر 41% ہونے کا انومان ہے۔ شہروں کو انجن آف گروتھ یا آرتھک وکاس کا انجن بھی کہا جاتا ہے، لیکن غریبی دور کرنے کی تلاش میں آئے لوگ شہروں کے اوکست باہری علاقوں یا جھگی جھونپڑیوں میں بنا سویدھاؤں کے سنویدنشیل حالات میں رہنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ شہری پرواسیوں کی مشکلوں و ضرورتوں کو سمجھنے کے لیے اور ٹکاؤ وکاس لکش حاصل کرنے میں ان کی اہمیت کے مد نظر دلی میں حال ہی میں ایک وچار گوشتی آیوجت کی گئی، جس میں غریب و ونچت سموہوں کی آوازوں کو بھی شامل کیا گیا۔ یو این نیوز ہندی کی انشو شرما نے دلی میں سنیکت راشٹر جن سنکھیا کوش کاریالے میں راشٹری کارکرم ادھیکاری دیویندر سنگھ سے اس سلسلے میں ایک خاص بات چیت کی اور سب سے پہلے پوچھا کہ بھارت میں شہری غریبی کتنا بڑا مدعا ہے۔
2011 کی جن سنکھیا کے گننا کے حساب سے بھارت میں 31% لوگ جو ہے شہروں میں رہتے تھے۔ یہ ایک چھوٹا جو آنکڑا لگتا ہے کہ صرف 31%، لیکن جب ہم اس کو واستوک نمبرس میں دیکھیں تو یہ آتا ہے لگ بھگ 40 کروڑ، جو کہ بہت زیادہ بڑی سنکھیا ہے، لگ بھگ یونائٹڈ اسٹیٹ کی جن سنکھیا، پوری جن سنکھیا کے یا اس سے بھی زیادہ۔ جو پروجیکشنز جو دکھاتے ہیں وہ یہ دکھاتے ہیں کہ 2030 تک یہ بڑھ کر 41% ہو جائے گی، اور نمبر کے حساب سے اگر دیکھے جائیں کل جن سنکھیا کا تو 60 کروڑ لوگ۔ تو یہ ہے کہ ابھی جی ڈی پی کا 60%، 60% بھارتیہ جی ڈی پی کا کنٹریبیوشن آتا ہے شہروں سے، اور 2030 میں تو یہ بڑھ کر لگ بھگ 75% ہو جائے گا۔ اپنے آپ میں دیش کی پرگتی کے لیے اور انتی کے لیے اور لوگوں کے خوشحالی کے لیے شہروں کا بہت زیادہ ایک مہتو ہے۔ اسی میں اگر ہم دیکھیں کہ دوسرا ایک پہلو بھی ہے، شہروں کو انجن آف گروتھ بولا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز زیادہ ہیں، باقی سہولتیں بھی زیادہ ہیں، اسی لیے لوگ جو ہے گاؤں سے شہروں کی طرف آتے ہیں۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب وہ آ رہے ہیں اور جس امید سے وہ لوگ آ رہے ہیں وہی ہو رہا ہے کہ نہیں۔ بہت سے مائیگرنٹ جو آ رہے ہیں گاؤں سے اٹھ کے وہ سیدھے شہروں میں آ رہے ہیں، اور زیادہ تر جو ہے شہروں کے جو باہری علاقے ہیں یا پھر سلم جن کو ہم بولتے ہیں، ان میں وہ ان لوگوں کو رہنے کی جگہ اور وہاں پہ وہ لوگ رہ رہے ہیں۔ وہ غریبی دور کرنے کے لیے روزگار کی تلاش میں شہروں میں آ رہے ہیں، ان کا وہ سپنا پورا ہو رہا ہے کہ نہیں وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اور اگر ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول اچیو کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ یہ ایک مہتوپورن مدعا ہے۔
تو یہ جو وی این آر کنسلٹیشن چل رہے ہیں، تو اربن مائیگرنٹس پور پہ جو کنسلٹیشن ہوئی، اس میں اس چرچا میں کیا نکل کر سامنے آیا اور کیا کچھ چونکانے والی بات بھی سامنے آئی ہے؟
پہلی بات تو یہ کہ بہت ہی اچھا سماد ہوا وہاں پہ، اور جو سماجک سنستھائیں ہیں وہ آئی ہوئی تھی، انہوں نے الگ الگ مدعوں پہ بات کرنے کے لیے جو سماجک سنستھائیں کام کر رہی ہیں ان کو بلایا ہوا تھا۔ خاص باتیں جو ابھر کے آئی، جن کو اگر میں اگر تین بھاگوں میں وبھاجت کروں تو ایک تو یہ تھا کہ بنیادی جو ضرورتیں ہیں وہ لوگوں کی پوری نہیں ہو رہی ہیں، ان کو جو سویدھائیں سہولتیں جو ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی ہیں۔ دوسرا جو یہ تھا کہ کچھ خاص طبقے ہیں جو کہ زیادہ ولنریبل ہیں، چاہے آپ ان کو جو ریڑھی لگاتے ہیں پٹڑیوں پہ ان کا بات کر لو، یا پھر جو ہے کنسٹرکشن ورکرس ہیں ان کے بھی مدعے وہاں پہ اٹھے، اور جو سلم میں رہتے ہیں ان کے بھی مدعے اٹھے۔ تو ایک پاپولیشن کے حساب سے کہ کون کون سے جو جن سنکھیا کے جو طبقے ہیں جو زیادہ ولنریبل ہیں ان پہ بات اٹھی۔ تیسرا ایک اور دیکھنے میں آیا، کئی پریزنٹیشن وہاں پہ ہوئی، اس میں یہ بھی تھا کہ قانون بن جاتے ہیں، اسکیمس بن جاتی ہیں، لیکن آخری ویکتی تک جو سب سے غریب ہے، اسلمس میں رہ رہا ہے یا پھر جو دیہاڑی مزدور ہے، ان کے لیے جو اسکیمس اور وہ بنی ہیں وہ ان تو نہیں پہنچ پاتی ہیں۔ پھر کافی جو ہے سنستھاؤں نے یہ بھی بتایا کہ کیسے وہ سرکار کے جو وبھاگ ہیں ان کے ساتھ مل کے دوسرے لوگوں کے لیے کام بھی کر رہے ہیں، اور جو اچھے پائلٹ ماڈلس ہیں ان کے بھی بارے میں ذکر کیا گیا۔ سجھاؤ اس طرح کے بھی آئے کہ کیسے جو ہے لوگوں کا بھاگیداری زیادہ ہو ان اسکیمس میں، یا پھر جو کمیٹیز بنی ہیں، جو جیسے ایک کنسٹرکشن ورکر سیس ہے، وہ ہے تو ٹرائی پارٹائٹ کہ اس میں امپلائر بھی ہے جو کنسٹرکشن کمپنیز ہے، سرکار بھی ہے، اور جو کنسٹرکشن ورکر کے ہیں ان کے نمائندے بھی ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے کنسٹرکشن ورکر کے جو ہے ان کی باتیں نہیں سن کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو ان کا یہ بھی تھا کہ اگر ہمارا جو ہماری ضرورتیں ہیں کیسے وہ پیسہ خرچ ہو، یہ بات وہاں پہ ہو تو زیادہ اچھا رہے گا۔
تو آج کے کارکرم میں بس اتنا ہی۔ محبوب خان کو اجازت دیجیے۔